तो रामनवमी के इस महापर्व पर भगवान राम की और उनके परिक्रमा की याद की जा रही है। यहाँ छवि में श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान के साथ खड़े हैं। तो इस बार मुख्य कथा होगी कि भगवान के साथ सीता जी किस प्रकार जाने के लिए आग्रह करते हैं। मन में भगवान मना कर रहे हैं, तुम अयोध्या में रहो, माता को कौशल्या की सेवा करो। पर सीता जी वन जाने के लिए इतना उत्कंठित है कि ये कहती है, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, आप मुझे नहीं चलिए। इतना प्रेम है सुप्रिया जी का, तो भगवान उनके लिए माता को स्वीकार कर दिए और अंत में कह दिया ठीक से चलो। तो मुख्य कथा है श्री सीता जी के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में। श्री सीता जी के साथ भगवान का सम्मान होना पड़ता है। दो दिन से नहीं करता और उसके बाद लक्ष्मण जी का जो एपिसोड है वो दो दिन भगवान लक्ष्मण जी के साथ बात करेंगे और फिर लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी से बात करेंगे। माता सुमित्रा हर्षित है लक्ष्मण जी का भवन में होंगे। कौशल्या के पास गए हैं, यह समाचार सुन करके श्री प्रिया जानकी जी माता कौशल्या के पास गई भगवान से पहले। तो माता कौशल्या उनको समझा रही है, बेटी तुम घर पर ही रहो। पर सीता जी रो रही हैं, मेरे प्राणनाथ जहां रहेंगे वहां रहना मेरा धर्म है। उसी समय भगवान राम अपने माँ के पास जाते हैं तो माता को उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बात कहा सिखाया, मां धीरज रखो, समय बीतते देर नहीं लगती है, 14 दिन की तरह बीत जाएगा। माता को सुंदर लगी कहने कि बेटा ये राजकुमारी महाराज जनक की पुत्री तुम्हारे साथ वन में जाने का हट कर रही है, कैसे जाएगी वन में? यह घर में बंदर का चित्र देख करके डर जाती है, जंगल में कैसे रहेगी? मैं इतना प्रेम से रखी हूँ इसको, अभी बातें भी बंद करने के लिए नहीं कही, दीप बात नहीं टाइम कहा। और सीता पलंग पीठ तजिगोद हिंडोरा, पलंग पीठ आसन और गोद को छोड़ करके कभी भूमि पर पैर नहीं रखी। ये इतनी सुकुमारी है, इसके चरण कमल इतने सुकुमार है, अतः तुम ही समझाओ बेटा। या हमको बताओ कि हमको क्या कहना चाहिए, मैं सीता को क्या कहूं? तो भगवान अपनी प्रिया को सीता जी को समझाने लगे, लगे प्रबोधन जान की ही प्रगति विपिन दोष, वन में जाने का क्या दोष है अयोध्या में घर पर हम लोग का क्या गुण है इसको कहकर समझाने लगे। मां तो समय को कह तो सब चाहिए, माता के सामने अपनी पत्नी से बात करने में संकोच हो रहा है, बोले समय समझी मन माए, पर समय को समझ करके कि यह विपत्ति का समय है भगवान बोले, राजकुमारी सिखावत सुनहु आन भात जन जिये कछु गुण। संबोधन करते हैं जानकी जी को, हे राजकुमारी, हे महाराज जनक की नंदिनी, तुम मेरी शिक्षा को सुनो, मैं कोई उपदेश नहीं कर रहा हूँ, सामान्य शिक्षा की बात कर रहा हूँ। राजकुमारी सिखावन सुनहु आन भात जन जिये कछु गुणहु। तुम अपने मन में कुछ दूसरा मत सोच लेना कि मैं तुमको घर पर रखने के लिए कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मैं तुमको रख रहा हूँ केवल माता की सेवा के लिए। आयस मोर सास सेवकाई सदविधि भामिनी भवन भलाई, मेरी आज्ञा है, ये कर्तव्य होता है पत्नी का कि अपने पति की आज्ञा माने, इस कारण से मैं आज्ञा दे रहा हूँ, मेरी आज्ञा है सास सेवकाई मेरे माता की सेवा, सदविधि भामिनी भवन भलाई। हे भद्र महिला, सब तरह से घर पर ही रहने में भलाई है, मेरी आज्ञा का पालन होगा और मेरी माता की सेवा होगी। मेरी माता न कह करके कह रहे सास, सास की सेवा होगी, उन तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी वो माँ है। आयस मोर सास सेवकाई, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा होगी। इस तरह से सब प्रकार से भलाई है घर पर रहने में, वन वन चलने का हक नहीं करना चाहिए। इतने अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। वो क्या धर्म है? सादर सास ससुर पद पूजा, प्रेम से आदर से सास और ससुर के चरणों की पूजा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारे लिए। जब जब माँ तो करई सुधि मोरी, हो ही प्रेम विकल मत भोरी। जब जब मेरी माँ मेरा स्मरण करेगी कि मेरा बेटा वन में है, तब मेरी माता को बहुत दुख होगा, कभी कभी वो पागल जैसी हो जाएगी मेरा चिंतन करके। तब तक तुम कहीं कथा पुरानी सुंदर समझाए हूँ मृतबानी। जब जब मेरी माता मेरी चिंता करे, तब तक पुराणों की कथा को कह करके इतिहास सुना करके मेरे माता के शोक को दूर करना मधुर वाणी से। यही सेवा है मेरे माता का शोक दूर करने। भगवान कहे कथा पुरानी, पुरानी कथाएं बीते बीते हुए इतिहास को सुनाना, इससे बहुत से
लोग वन में गए हैं, बहुत से राजा लोग वन में गए हैं, ऐसे संकट आ जाता है तो मैं पिताजी की आज्ञा से वन में जा रहा हूँ, जब जब मेरी माता मेरी चिंता करे और उसकी मति ठीक न रहे तब तक तुम पुराण की कथा सुना सुना करके मेरे माता का शोक दूर करना। तो मानो सीता जी को, सीता जी के मन में बात आई कि माता का शोक दूर करने के लिए तो गुरु माता जी हैं, अरुंधति जी हैं और मंत्री जी सुमंत जी की पत्नी हैं, वे लोग समझाएंगे, हमारी क्या हो सकता है। शायद सीता जी ये सोच रहे किसी बहाने से हमको रखना चाहते हैं, इसलिए भगवान शपथ खा रहे हैं। सुमुखी सुभाय शपथ सत मोही, केवल मात हित राखूं तो ही शपथ कर रही हूँ, मैं सैकड़ों शपथ खा रहा हूँ, किसकी शपथ खा रहा है ये नहीं कहे, कहें कि मैं सैकड़ों शपथ खा रहा हूँ, किसी का नाम रखने पर उसकी शपथ होती, लेकिन नाम नहीं रख रहे हैं, मैं सैकड़ों शपथ खा रहा हूँ। तुम विश्वास करो, केवल माता के हित के लिए मैं तुमको जो ध्यान रखना चाहती हूँ, यह कितना बड़ा त्याग है। व्यक्ति समझता है कि पत्नी मेरी है, मेरी सेवा के लिए है, लेकिन भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं अपने स्वार्थ को अपने तरफ न दे करके दूसरे के हित पर ध्यान देना चाहिए। सीता जी नवविवाहिता है, जो ध्यान में आई है, 6 वर्ष पहले विवाह हुआ है, 12 वर्ष की उम्र में, और उस समय भगवान सीता जी के साथ रह रहे हैं। जो ध्यान में सीता जी 18 वर्ष की हो गई, कभी पति से बात नहीं की, प्रथम बार अपने सास के सामने अपने पति से बात कर रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल तुम्हें माता के हित के लिए रखना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई है भी नहीं कलेश, अथवा सब संकट सहे कालो नहुष नरेश। भगवान दो इतिहास सुना रहे हैं, हे सीता सुनो, गुरु और वेद के आज्ञा को मानने पर, वेद और गुरु के अनुसार जो धर्म है उस धर्म का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। यदि गुरु की आज्ञा मानी जाए और वेद की आज्ञा मानी जाए तो धर्म का फल जल्दी मिल जाता है, और कोई हठ करता है, अपनी बुद्धि चलाता है, तो इसके विषय में दो इतिहास सुना रहा हूँ, गालव मुनि और राजा नहुष, ये दोनों बहुत हठ किए, हठ के कारण को बहुत क्लेश उठाना पड़े, इसलिए तुम ही हठ मत करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो और वेद के अनुसार जो धर्म है उसका पालन करो। इतिहास इस प्रकार का है, महाभारत में है, गालव नाम के एक मुनि थे, विश्वामित्र जी के शिष्य बहुत विद्या अध्ययन किए, बहुत पढ़ाई की और उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरु जी को दक्षिणा दूं। बहुत वर्षों के बाद विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि बेटा तुम पढ़ लिए हो, ठीक है घर जाओ, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। परंतु गालव मुनि के मन में यह दुराग्रह था कि मैं तो दक्षिणा दूंगा ही, दक्षिणा के बिना मैं कैसे रह सकता। गुरु जी का बहुत बड़ा उपकार है इसलिए गुरु दक्षिणा चुकाऊंगा, जो उनकी इच्छा होगी वो दूंगा। पर विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम जहाँ चाहते हो जाओ। लेकिन गालव मुनि बहुत बार हट किए, बार बार कहते थे कि गुरु जी हमें दक्षिणा देने के लिए कहिए, मैं क्या आपकी सेवा करूं। विश्वामित्र जी कह देते थे नहीं मुझे तंग मत करो, मैं दक्षिणा नहीं चाहता हूँ, दक्षिणा की जरूरत नहीं, मैं दक्षिणा के लिए तुमको नहीं पढ़ाया, मेरा कर्तव्य था मैंने तुमको पढ़ा दिया, बस मेरा कर्तव्य पूरा हुआ यही मुझे खुशी है, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन गालव मुनि बार बार हट करते रहे, पूछते रहे गुरु जी हमें कोई सेवा दीजिए, दक्षिणा देना चाहता हूँ, दक्षिणा के बिना पहले के विद्यार्थी नहीं रहते थे, गुरु जी को अवश्य दक्षिणा देते थे गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते समय। आजकल के गुरु लोग तो शिक्षा देने के पहले ही नामांकन के समय ही सारी फीस ले देते हैं, भले लड़का पढ़े या मत पढ़े फीस दे जमा कर दिया जाता है। पर पहले के गुरु ऐसे थे जो पूरी शिक्षा देने के बाद तब दक्षिणा मांगते थे, जो जैसा होता था उसी के अनुसार दक्षिणा मांगते थे। भगवान भी उज्जैन में पढ़ने गए मथुरा से, भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ पढ़ने गए, पिताजी ने नामांकन करा दिया उज्जैन में, गुरु का नाम था संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, उनकी पाठशाला थी उज्जैन में, और दुष्देव जी ने अपने दोनों पुत्रों का नामांकन कराया उज्जैन में, उज्जैनी, उज्जैनी उस समय कहा जाता था, उज्जैनी पुरी। तो दोनों बच्चे कृष्ण और बलराम 64 दिन पढ़े गुरु संदीपनी मुनि के यहाँ, 64 दिन में सभी प्रकार की विद्या, सारा वेद वेदांत, धनुष बाण चलाना, बांसुरी पर गीत गाना या कोई भी कला बाकी नहीं रही, सब कुछ सीख लिए केवल 64 दिन में। लेकिन 64 दिन ऐसे पढ़े कि एक दिन भी सोए नहीं, रात को भी पढ़ते थे। गुरु जी बहुत प्रसन्न थे कृष्ण बलराम पर, पढ़ाई में ऐसे ध्यान देना चाहिए, 64 दिन कोई चिंतन दूसरा ना करके केवल विद्या अध्ययन करते रहे। दोनों बहुत विलक्षण विद्यार्थी थे। तो अंत में भगवान ने कहा कि गुरु जी हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई संदीपनी मुनि को, उन्होंने कहा ठीक है बेटा। तो वे पहले अपने गृह मंत्री से बात किए, अपनी पत्नी से, कभी एक लड़का जो पढ़ने आया है मथुरा से अपने भाई के साथ, यह लड़का विलक्षण बुद्धि वाला है, विलक्षण शक्ति वाला, इसे क्या दक्षिणा मांगनी चाहिए। तो गुरु जी की पत्नी ने बताया कि मैं वंशहीन हूँ, मेरा पुत्र नहीं है। हम लोग गए थे गुजरात में समुद्र के किनारे प्रभास तीर्थ में स्नान करने के लिए, तो वहीं पर समुद्र की लहरों में हमारा बेटा बह गया। तो जब इतना विलक्षण शक्ति वाला ये विद्यार्थी है तो इसे यही दक्षिणा मांगिए कि हमारे मरे हुए बेटे को ये लाभ दे। तब गुरु जी ने वही दक्षिणा मांगा, जो जैसा योग्य होता है उसके अनुसार ही दक्षिणा मांगनी चाहिए। तो गुरु जी ने दक्षिणा मांगा कि बेटा मेरा पुत्र प्रभास तीर्थ में डूब गया समुद्र में, उसको तुम ला दो। गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई रथ पर बैठे, मथुरा में आए, मथुरा से रथ पर बैठे और गए प्रभाश्चित। वहां पर श्री बलराम जी को भगवान ने कहा कि भैया आप बैठिए समुद्र तट पर, मैं समुद्र में डुबकी मार रहा हूं। श्री कृष्ण डूबे समुद्र में खोजने लगे उस बच्चे को जो कई साल पहले डूब गया था। तो भीतर वरुण देव रहते हैं, समुद्र के जल के देवता। वरुण देव ने भगवान को प्रणाम किया, उनकी बहुत पूजा किया और कहा कि हे प्रभु मैं उस बच्चे को नहीं रखा हूँ, एक पंचजन नाम का राक्षस असुर उस बच्चे को हर लिया, डुबा लिया। वही रखा है, तो पंचजन को भगवान ने मारा, शंख के रूप में रहता, इसी से उस शंख को लेकर के भगवान ने उस शंख का नाम ही रख दिया पांचजन्य शंख। शंख के आकार में रहता था, उसका वध किया भगवान ने। तो उसके बाद जमलोक में गए, जमलोक में उस बच्चे को भगवान जमराज जी ने हाजिर किया। जितनी उम्र थी उतनी उम्र का बच्चा है। फिर उधर करके उस बच्चे को पुनः रथ पर बैठे और उज्जैन आ गए, गुरु जी के चरणों में गुरु पुत्र को समर्पित किए। इस प्रकार की दक्षिणा कौन दे सकता है? केवल भगवान ही दे सकते हैं। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा बेटा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जो कुछ पढ़े हो वो कभी तुम्हें भूलने न पाए, तुमने मेरे वंश की रक्षा की, तुम्हारा वंश बहुत विस्तृत होगा। कुछ भक्त कहते हैं कि गुरु जी के आशीर्वाद से ही कृष्ण भगवत गीता बोल दिए, इतना दिव्य ग्रंथ। जो कुछ हुए भी सत्य है, भगवान मानव लीला करते हैं तो अवश्य गुरु जी का आशीर्वाद भी है। तो एक कथा है गुरु दक्षिणा देने की, तो मुनि गालव भी दक्षिणा देना चाहते थे, बार बार आग्रह किए विश्वामित्र जी से, पर विश्वामित्र मुनि ने कहा दिया नहीं। लेकिन गालव मुनि बार बार विश्वामित्र से कहे, तब वे उद्विग्न होकर कह दिए, तुम मुझको 800 घोड़ा ला करके दो, और ऐसा घोड़ा जिसका एक कान काला हो और सारा शरीर चंद्रमा की तरह उजला हो, ऐसे घोड़े चाहिए और एक एक कान काला हो, सारा शरीर चंद्रमा की तरह धवल हो, उद्विग्न होकर के गुरु जी कह दे ये दक्षिणा दो हमको। अब गालव मुनि बहुत परेशान हुए, पृथ्वी में सब जगह घूमे, कहीं ऐसे घोड़े नहीं मिले। अंत में गरुड़ जी ने, भगवान के वाहन गरुड़ जी ने उनकी सहायता की। गरुड़ ने कह दिया कि महाराज जयाति के पास जाइए, उनसे मांगिए। ये महाराज जयाति के पास गए और 200 घोड़ा लाए, केवल 200, 600 बाकी है। संजय बहुत पृथ्वी पर घूमे गरुड़ जी की सहायता से, कहीं थे ही नहीं पृथ्वी पर घोड़े, स्वर्ग में भी ऐसे घोड़े नहीं थे कि जिनके एक कान काला हो और सारा शरीर चंद्रमा की तरह उजला हो। छह सौ घोड़े दे नहीं पाए, हम तो विश्वामित्र मुनि ने कह दिया ठीक है, बस हम दक्षिणा देने की चेष्टा मत करो। लेकिन गालव मुनि इतने जिद में थे कि मैं दक्षिणा दे करके ही रहूंगा, गुरु जी बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन वे प्रयास में लगे रहे। इसके लिए उन्होंने जजाति राजा की कन्या से विवाह तक किया। बहुत दुर्गति में पड़े, बहुत अपजस हुआ, दक्षिणा दे नहीं पाए। ये हट किए थे, ये महाभारत में कथा है, हट से उनको कष्ट हुआ, इसलिए हट नहीं करना चाहिए। तो भगवान सीता जी को समझा रहे हैं कि तुम वन में चलने का हट मत करो। वन में बहुत कष्ट होता है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, बहुत घाम सहना पड़ता है, घोर घाम हिम ठंडा बारी आंधी और बरसात सहना पड़ता है, कभी कभी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, घोर घाम हिम, कभी कड़ाके का ठंडा पड़ता है, बहुत जोर की आंधी चलती है, झकोरे वर्षा के पड़ते हैं, बहुत कष्ट होगा वन में, इसलिए मत चलो, चलने का आग्रह मत करो। उसे कन तक मगर कांकर नाम है, चलो पया दे बिनुपद त्राण है, तो मेरे साथ चलोगी तो निश्चित ही बिना पद प्राण के चलना पड़ेगा। वन में कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, खड़ाऊ नहीं पहनना होगा। बिना पद प्राण के पैर की रक्षा करने के लिए खड़ाऊ या जूता होता है, तो जूता पहन करके, चप्पल पहन करके नहीं चलना होगा। रास्ता कैसा है इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। कुछ कण तक मग कांकर नाम है। रास्ते में कुश होता है, कांटे होते हैं, और कांटे जमीन पर फैले रहते हैं। दिखाई भी नहीं पड़ता, और कुश एक घास होती है, उसकी पत्ती बहुत नुकीली होती है, कांटे से भी भयानक होता है। जिस घास को ब्राह्मण कर्मकांड में उपयुक्त करते हैं, कुश, तो कुश पर चलना होगा। रास्ते में अनेक कंकड़ होंगे, पत्थर के टुकड़े, उन पर पैर रखना पड़ेगा। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलो पया दे बिन पद प्राणा। पैदल ही चलना पड़ेगा बिना पद प्राण के। कंदर खो नदी नगनारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। पहाड़ में अनेक कंदराएं होती हैं, कंदर मतलब गुफा, और खो दो पहाड़ों के बीच में जो भूमि होती है उसको खो कहते हैं। खोह पड़ेंगे, कंदराएं पड़ेंगी, गुफाएं पड़ेंगी, और कहीं कहीं बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ना होगा, चढ़ान पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। अंदर खो नदी नारे, कभी कभी रास्ते में बड़ी नदी भी पड़ जाती है। बड़ी नदी को नद कहते हैं, और नाले पड़ते हैं, वहां बहुत दलदल होती है, उसको पार करना बड़ा कठिन होता है। अगम अगाध न जाहि निहारे, कभी कभी तो नदी में इतना अगाध जल होता है कुछ पता नहीं चलता है, और देखने में भी डर लगता है। अगम अगाध न जाहि निहारे, चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, और तुम्हारे चरण अत्यंत कोमल हैं, परम सुंदर हैं। इन सुंदर पैरों से कैसे जंगल में चलोगे? चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, भूमि धर भारे, बड़े बड़े पर्वत जो पृथ्वी को धारण करते हैं रास्ते में पड़ेंगे। कभी बहुत ऊंचा चढ़ना होगा, कभी नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरने में कोई सुंदर रोड या समतल जमीन नहीं पड़ेगा। खो नदी नद नारे, नाले पड़ेंगे, इस प्रकार भगवान ने बहुत बातें कहा। भूल रहे, मैं एक इतिहास सुनाया महाराज नहुष का, गालव नहुष नरेश। नहुष महाराज एक बहुत बड़े राजा थे चंद्रवंश में, इतने प्रतापी की एक बार इंद्र का पद खाली हो गया, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ब्रह्म हत्या के डर से मान सरोवर में छिप गया इंद्र, स्वर्ग सम्राट का पद खाली। तो उस समय राजा नहुष को देवताओं ने इंद्र बना करके उनको स्वर्ग में इंद्र के पद पर बैठा दिया। इतने प्रतापी राजा थे, इतनी योग्यता थी, इतनी मैनेजमेंट की शक्ति थी कि उनको स्वर्ग का राजा बना दिए। तो जब स्वर्ग में इंद्र का पद नहुष को मिला तो वे अपना विवेक खो दिए, स्वर्ग के आनंद वैभव को भोगने लगे। तो उनके मन में यहां तक आ गया निज विचार कि जो इंद्र की पत्नी है अब उसे मेरी पत्नी होना चाहिए। उन्होंने माता सची से ये प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी सेवा में आओ, क्योंकि मैं इंद्र हूं, स्वर्ग का राजा मैं। तो पतिव्रता स्त्री हो तो बड़े दुख में पड़ी थी, एक तो पति नहीं थे, मान सरोवर में छिपे हुए, पता ही नहीं था कहाँ चले गए। तो उस विपत्ति में उसने अपने गुरु महाराज से कहा, बृहस्पति जी से, किसी घोर संकट के समय गुरु ही सहारा होता है। तो गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम थोड़े समय के लिए मोहलत मांग लो, राजा नहुष से मोहलत मांग लो कि हमें कुछ समय दीजिए, मैं आपकी सेवा में आऊंगी। ये कह करके तो सचिन ने मोहलत मांग लिया। कुछ दिन बीता पर नहुष का अविवेक इतना बढ़ गया तो उतावले हो रहे थे। उन्होंने शशि से कहा कि तुम बताओ मेरी आज्ञा कब मानोगी। तब गुरु जी के परामर्श से माता सची ने कह दिया, यदि आप ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ करके आए नई सवारी पर, और सवार और ढूंढने वाले भी ब्राह्मण होंगे, तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। आपको आना पड़ेगा हमारे घर, ब्राह्मणों को दास बना करके उनको पालकी में जोत करके आएंगे। तब तो नहुष का अभिमान इतना बढ़ा हुआ था और तेज भी बहुत बड़ा था, उनके तेज के सामने सबका तेज फीका हो जाता था। तो इस अविवेक काम से अंधे हो करके उन्होंने यह विचार नहीं किया कि यह जगत पूज्या माता है, बहुत श्रेष्ठ देवता की धर्म पत्नी है, इसके प्रति तो मन में विचार कुचित आना यही गलत है। और उस पर भी इतना हट किए कि ब्राह्मणों को पालकी में जोत दिए, चलो तुम लोग पालकी उठाओ। ऐसे जगत पूज्य ब्राह्मणों को इस सेवा में लगा देना, इतना अभिमान था नल से। तो उस पालकी में अगस्त मुनि भी लगे थे, ये साउथ इंडिया में रहते हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। पालकी खुली थी और चलने में ब्राह्मण लोग देर कर रहे थे, तो नहुष ने पैर से मारते हुए ऋषियों को कहा, सर पर जल्दी चलो जल्दी चलो। और इतना अभिमान में थे रे, अगस्त जी के सिर पर पैर से प्रहार किए। तो पालकी को तुरंत रख करके और अगस्त जी ने साथ दिया कि तुम सर्प हो जाओ, बस मुनि के कहते ही नहुष सर्प बन गए और स्वर्ग से गिरने लगे, रोने लगे। अब तो बुद्धि खुल गई, रो रहे थे। ब्राह्मण स्वभाव से ही दयालु होते हैं, अगस्त जी को दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, गलती हो जाती है किसी भी मनुष्य से, तुम्हारे अंदर जो दुर्विचार आया उसी दुर्विचार से तुमने ये काम किया है, लात मारा हम पर, तुम तो सर्प बनोगे निश्चित, पर बहुत बलवान सर्प बनोगे, बहुत बड़ा अजगर, और दिन के छठे भाग में किसी भी हाथी को, मनुष्य को, व्याघ्र को, बलवान से बलवान जीव को पकड़ लोगे तो तुमसे छूट नहीं पाएगा, तुम्हारा भोजन इस पर चलता रहे। पर राजा नहुष तो रो रहे थे कि मैं सांप से कब मुक्त होंगे, अजगर जोनी से कब मुक्त होंगे। तब अगस्त मुनि ने यह कहा कि तुम 10,000 वर्ष अजगर बनोगे, पर किसी श्रेष्ठ सज्जन से जब तुम्हारी बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, तब तुम सर्प जन्म से मुक्त हो जाओगे। वही नहुष सर्प बने थे जब पांडव लोग अद्वैत मन में रहते थे। उस समय माता कुंती भी थे और गुरु धौम जी भी थे। एक दिन भीमसेन बहुत से हिंसक जंतुओं को मारते हुए, पेड़ों को उखाड़ते हुए घूम रहे थे घमंड में, तो वही अजगर उनको पकड़ लिया भीम को। तो ऋषि का साथ था, इसलिए कितना भी जोर लगाए पर अंततः परास्त हो गए, और सांप के चंगुल में फंस गए थे, सांप अपने देह में फंसा लिया था उनको। तो शाम हो गई, रात हो गई, गुरु जी के अनुसार महाराज युधिष्ठिर अपने भाई को खोजने के लिए निकल रहे, बड़ी चिंता हो रही थी कि सब भाई आ गए लेकिन भीम नहीं आया। भीम तो सर्प के चंगुल में फंसे थे, तो पेड़ों को टूटा हुआ देख करके, हाथियों को मरा हुआ देख करके, उस रास्ते से अनुमान कर गए महाराज युधिष्ठिर की ये भीमसेन का काम है, इधर गया होगा। चलते चलते गए, रात हो गई थी, दीपक जला करके, मसाज जला करके देख रहे थे, उस समय टार्च नहीं था। उसी दीपक के सहारे आगे बढ़े तो देखे कि भीमसेन एक महान सर्प के देह से जकड़े हुए हैं। जो सर्प बड़ा विलक्षण था, उसकी आकृति बहुत सुंदर थी, बहुत बलवान था सर्प था। तो महाराज युधिष्ठिर से बात करना चाहता था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर सबसे पूर्ण चरित्र महाराज युधिष्ठिर थे, सबसे शुद्ध व्यक्ति। तो महाराज नहुष जो सर्प शरीर में थे, वे महाराज युधिष्ठिर से वार्तालाप करना चाहते थे। ऐसे पूछने लगे, आप कौन हैं? इस भाई का क्या नाम है जिसको मैं पकड़ा हूं? कई बातें की है, दो मुख्य बात। महाराज नहुष ने सर्प देह ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आप हमसे कुछ पूछिए और मैं भी आपसे पूछूंगा। तो नहुष ने पूछा, यह बताइए कि ब्राह्मण जन्म से होता है कि कर्म से? जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है या कर्म करने से? इसका उत्तर महाराज युधिष्ठिर ने दिया, जन्म तो सबका एक समान होता है, चाहे शूद्र हो या ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का जन्म भी होता है शूद्र की तरह। वास्तव में ब्राह्मण बनता है वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से ब्राह्मण होता है, केवल जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। और फिर नहुष ने पूछा, मैं आपकी बात से प्रसन्न हूं और मेरा प्रश्न तुमने पूछ दिया, आप मुझसे पूछिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप विलक्षण सर्प में आप विशिष्ट योनि से गिरे हुए जीव लगते हैं, आप एक बात बताइए कि मनुष्य को कृष्ण भावना से गिराने में कौन सा सबसे बड़ा कारण है, किस कारण से व्यक्ति गिर जाता है? तो नहुष बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि महाराज इसके विषय में मैं प्रमाण हूं, मैं आपको सही सही उत्तर दूंगा। मनुष्य धन मद से बहुत जल्दी गिर जाता है। मैं आपका पूर्वज हूं, आपने मेरा नाम सुना होगा, नहुष में स्वर्ग गया था, इंद्र के पद पर था, मुझे बहुत अभिमान हो गया। अकस्मात स्वर्ग का धन पा करके मेरी बुद्धि नष्ट हो गई और मैं इतना विवेकहीन हो गया कि मैं ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ना चाहा। और सच्ची का संग चाहा। तो मेरा अनुभव है कि इस जीवन में सबसे ज्यादा घातक है वो है धन पद, यही किसी व्यक्ति को गिरा देता है। मैं इतना बड़ा उन्नत पद पर था, देवताओं में सिरमौर पर मैं गिरा दिया, इस तरह से नीचा हो गया। तो मेरा अनुभव है कि मनुष्य सबसे ज्यादा गिर सकता है धन और पद से। इस तरह से बात किए और महाराज दृष्टि से वार्तालाप का फल हुआ कि नहुष सर्वजन से मुक्त हो गए और विमान पर चढ़ करके जहां से गिरे थे वहीं चले गए, स्वर्ग में चले गए। और तब तक इंद्र भगवान का समय पूरा हो गया था, वे लौट आए थे। अब बहुत नम्र बन करके नहुष स्वर्ग में रहते थे। बहुत ताजा ज्ञान हो गया था, कभी दुर्विचार नहीं आया, बहुत शुद्ध हो गया। महाराज दृष्टि से बात करके पुनः स्वर्ग चले गए। उन्हें दृष्टि के सामने ही विमान पर चढ़ करके स्वर्ग चले गए, पर पूर्ण शुद्ध होकर के। ध्वाट किए थे, बहुत ऋषियों ने समझाया, देवताओं ने समझाया कि महाराज नहुष आप ऐसा काम मत कीजिए। शची के प्रति ऐसा दुर्विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मणों का इतना अपमान आपके योग्य नहीं है। पर वे नहीं माने, नहीं मानने से उन्हें 10,000 वर्ष तक अजगर बनना पड़ा। तो इस इतिहास को भगवान सुना रहे हैं श्री जानकी जी से। आठ वर्ष अब संकट सहे गालव नहुष नरेश। गालव मुनि और राजा नहुष इस प्रकार के संकट सहे आठ के कारण। तुम भी हठ करोगी तो संकट पड़ेगा। भगवान का कहना झूठा नहीं हुआ, संकट पड़ा। रास्ते में सुपरंखा खाने के लिए दौड़ी थी सीता जी को, और राक्षस रावण हर करके दुष्टों की नगरी में ले गया। कुछ दिन भगवान से वियोग भी रहा सीता जी का। तो हठ करना ठीक नहीं है। भगवान ने मन के दुख को समझाया, बहुत दुख है। भूमि स्वयं बलकल बसना असन कंद फलमूल। देखो राजा की कुमारी, तुम कभी जमीन पर नहीं सोई हो, लेकिन वन में जाने पर भूमि स्वयं भूमि पर सोना पड़ेगा। कभी कभी जमीन पर सोने पर जमीन की ठंडाई शरीर में घुस जाती है, जल्दी निकलती नहीं। बलकल बसना, सोने के लिए जमीन रहेगी, पत्थर रहेगा, और बसन वस्त्र बलकल पेड़ की छाल मिलेगी पहनने के। पेड़ की छाल से शीत का, घाम आदि का निवारण नहीं हो सकता है, केवल लज्जा का निवारण होता है। भूमि स्वयं बलकल बसना असन कंद फलमूल, ते की सदा सब दिन में रही सभी समय अनुकूल। और यह भी कोई सब जगह सब समय नहीं मिलता, सब समय अनुकूल। अपने अपने समय पर सभी फलते हैं, ऋतु के अनुसार फल मिलते हैं, कंद मिलते हैं। कंद जमीन में गोलाकार एक जड़ होती है और एक ही जड़ मोटा, उसको कंद कहते हैं। मूल जैसे मूली है, पेड़ की जड़ कई होती है, असल कंद फल मूल ते की सदा सब दिल मिल सभी समय अनुकूल, सब समय सब जगह नहीं मिलता है। तो किसी किसी दिन खाने को मिलेगा और बाकी दिन तो उपवास ही करना पड़ेगा, जब मिलेगा ही नहीं तो क्या करोगे। भगवान समझा रहे हैं जंगल में ऐसे ऐसे राक्षस रहते हैं, नर आहार रजनीचर करें, रजनीचर रजनी माने आधी रात, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं जंगल में, ये रात को घूमते रहते हैं निशाचर, भोजन की खोज करते हैं रात को। और भोजन में क्या करते हैं, नर आहार रजनीचर करें, रजनीचर निशाचर राक्षस मनुष्य को खा जाते हैं। रात जग करके, रात भर जग करके देखना पड़ता है कोई राक्षस आ न जाए, तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी राक्षस के डर से। और जब नींद अच्छी नहीं आएगी तो सांस ठीक नहीं रहेगा। रात भर जाग करके राक्षसों को देखोगी कि सोओगे, और अभी भगवान कह रहे हैं कि कपट वेश विधि कोटिक करें और बनावटी वेश धारण करके राक्षस घूमते रहते हैं रात रात भर, इसलिए पहचानना भी कठिन है किस वेश में आ जाए कुछ पता नहीं। जैसे भगवान की लीला में कालनेमी आया है, कालनेमी हनुमान जी को ठगने के लिए तपस्वी मुनि का वेश बना करके आया, रावण जति ग्रहण करके आया था, सीता का हरण सन्यासी बनकर, सुर्पखा आई थी बहुत सुंदरी स्त्री बनकर के, मारिच राक्षस गया था सीता जी को लुभाने के लिए बनकर। इस तरह से राक्षस लोग विविध वेश धारण करके और मनुष्यों को खाते रहते। लागे यदि पहाड़ कर पानी, और पहाड़ का पानी बहुत लगता है, उससे रोग पैदा हो जाता है। कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पहले बहुत लोग बद्रिकाश्रम जाते थे, पैदल जाना होता था, पहाड़ का पानी पी करके दमा हो जाता था, अस्थमा और ठीक नहीं होता। ऐसी घटनाएं होती हैं, तो पहाड़ का पानी बहुत लगता है। विभिन्न विपत्ति नहीं जाए बखानी, वन में कितना दुख है यह वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हे जनक राज नंदिनी, तुम मेरे साथ चलने का आग्रह मत करो, घर पर रहो, माता की सेवा करो। माता ने अपने मुख से कहा था कि जौ सिय भवन रहई कह अम्बा, मुँह कह होई बहुत अवलंबा। यदि सीता घर पर रहेगी तो मेरे लिए बहुत अवलंबन बनेगी। अपने मुख से माता कौशल्या ने कहा, तो उसी की याद दिला रहे हैं भगवान राम की, माँ की बात मान जाओ, मेरी भी आज्ञा है और तुम यही रहो। भगवान हरि की कीर्ति अपार है, पर जैसा मुनियों ने कहा है, तो स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है कि मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई ते मग चलत सुगम महिराय। पहले के मुनियों ने भगवान की कीर्ति को बहुत तरह से गाया है, जैसे वर्णन किया है ते मग चलत सुगम महिराय, उसी रास्ते पर हमको चलना सुगम लगता है। तो उदाहरण देते हैं, अति अपार जे सरित भरा जौ निरपेत कराए चढ़ी पिपील को परम लघु बिलुषम पार ही जाए। जैसे राजा पुल बना देता है, ब्रिज बना देता है किसी विशाल नदी के ऊपर, जैसे गंगा जी हैं, जमुना जी, जैसे विशाल नदी के ऊपर ब्रिज बना देता है, तो उस ब्रिज पर चढ़ करके एक छोटी पिपील का चींटी भी आसानी से पार हो जाती है। जिस नदी में खास करके बरसात के दिन में बड़े बड़े हाथी भी बह सकते हैं, उससे विशाल नदी पर राजा या सरकार ब्रिज बना देता है तो सभी लोग आसानी से पार कर जाते हैं। यहाँ तक कि पिपीलिका भी, जैसे भगवान की कीर्ति मुनियों ने गाया है, वाल्मीकि जी ने गाया है, भगवान वेदव्यास ने, श्री सुखदेव गोस्वामी ने, सूत गोस्वामी ने, मार्कंडेय जी ने, बहुत मुनियों ने भगवान की कीर्ति को गाया है, तो उनकी गाई हुई गाथा को थोड़ा समय वर्णन किया, हमें आसान लगा कि ऐसे जो कहा है मुनियों ने उसको कहा जाए। और बड़े बड़े मुनियों के बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है भगवान की जस का वर्णन, और बहुत से कवियों ने, भक्तों ने वर्णन किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने वर्णन किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया है। तो उसी में से कुछ बातें मैं कहा, भगवान की कीर्ति अनंत है, उस अनंत में कुछ बातें कही जा सकते हैं ऋषियों के आश्रय में, उनके पदचिन्ह पर चलकर। यदि कोई फॉलो न करे, पुल बनाया है सरकार ने किसी नदी पर, तो वह पुल से न जाकर के सीधे धारा में कूदे तो कार भी जाएगी, कार में सवार सभी मर जाएंगे, पार नहीं हो सकते। पार जाना हो तो पुल का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की कीर्ति कहनी है या सुननी है तो पहले के मुनियों ने जो वर्णन किया है उसी के अनुसार बोलना चाहिए। तो श्री वाल्मीकि जी ने और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है हम मनुष्यों के लिए वही आधार है। उन्हीं के आधार से हम लोग कुछ सुना सकते हैं। इसमें जो भी त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा करेंगे। ऐसे मैं तो शरीर से भी कमजोर हूँ, मुझे रोग है, फिर भी भक्तों के आग्रह से मैं स्वीकार कर लिया और भगवान की कीर्ति का वर्णन ऋषियों की परंपरा से होकर करने का साहस किया। इसमें कुछ त्रुटि होगी ऐसा नहीं, केवल त्रुटि ही है। उसको ध्यान में लेकर के भगवान के जो भी गुण वर्णन किए गए उसी को याद करना चाहिए। भगवान अपनी प्रिया से कैसे बात कर रहे हैं और प्रिया जी ने किस तरह उन बातों का उत्तर दिया है, ये कथा बाद में हो। जय श्री कृष्ण।